ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க் யூ. ஓம் நம சிவாய.
तो मकान है ने, यही सबूत है कि इसको बनाने वाला कारपेंटर होगा, चिनाई करने वाला कड़िया होगा, डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट कोई होगा, क्योंकि मकान है. समझ में आती बात? रचना है तो रचयिता होना ही चाहिए. आंख से नहीं देखा है, नहीं दिखता है तो क्या हो गया? होगा तो सही. क्या नाम भाई आपका? नाम क्या है? जीतू भाई. क्या टाइम हुआ है? वो घड़ियाल बिगड़ गई. आठ? पांच कम है क्या? ज्यादा हो गए? ऊपर हो गई. अच्छा, तो ये घड़ियाल मेक कौन सी है? हैं? सिटीजन. कहां की? मीडिंग जापान है. जापान के अंदर ये सिटीजन कंपनी में कोई कारीगर ने इसका छोटा चक्कर, बड़ा चक्कर, बड़ा कांटा, छोटा कांटा, सेकंड कांटा सब एसएमएल किया होगा कि नहीं? कोई कारीगर ने किया होगा? आंख से देखा है तो क्यों मानता है किया होगा? नहीं. हाँ, घड़ी चलती है तो उसको चलाने वाला होना चाहिए. आंख से नहीं दिखता है तो कोई परवाह नहीं. मगर अब हम चारवाक को कहा समझाने जाएंगे? मुश्किल है साहब. तो देखिए, उपनिषद हमारे वेदांत बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं. कहते हैं जो भी चीज आंख से दिखाई देती है उसको आकार है, आकार है उसका ही जन्म है. देखो, निराकार का तो जन्म होता ही नहीं. तो जिसका आकार है उसका जन्म है, जन्म है उसका नाम है. तो दृष्ट नष्ट स्वभाव, जो आंख से दिखाई देता है वो नाश होने के स्वभाव वाला है. जितने जितने मंदिर में जाकर जी जहां जा आप मत्था टेकते हो, वह मूर्ति दिखाई देती है कि नहीं? अरे दिखाई देती है कि नहीं? तो वो नाशवान है क्योंकि दिखाई देती है. उसको आकार है, आकार है उसका नाम है, नाम है उसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति उसका विनाश है. तो विनाशी भगवान के सामने जाकर सिर झुकाते हो? बेकार की बात है, बिना समझी हुई बात है. और अगर ऐसा है करते रहिए, अमर को कोई आपत्ति नहीं, करते रहिए. दृष्ट नष्ट स्वभाव. नहीं नहीं स्वामी जी, वो तो मूर्ति है ने, उसके अंदर कोई अमूर्त तत्व है, उसको हम नमन कर दें. अगर उसको नमन करना है ने, नहीं दिखाई देने वाले निराकार को, तो तेरे घर में भी है, वहां क्यों जाता है? मगर ये चारवाक वाले, जो चीज आंख से दिखाई देती उसको ही, शरीर दिखाई देता तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं. ऐसा मानने वालों के लिए वेद शास्त्र झूठे हैं, उपनिषद बेकार हैं, भगवद गीता को कोई अर्थ ही नहीं है. अरे क्यों ऐसी बात करते हो? अगर देह ही आत्मा है तो आपके पास देह है कि नहीं? अल्लाह देह है कि नहीं? तो एक देह वाला दूसरे को देखे, दूसरा उसको देखे, तो देह ही आत्मा है तो दोनों को आत्मा दर्शन तो हो गया, साक्षात्कार तो हो गया. मैं भी पागल हूं, मैं क्यों आता हूं? ये सब कुछ साक्षात्कार हो गया. अगर देह ही आत्मा है तो सबको आत्मा साक्षात्कार हो गया, मुक्ति मिल गई, मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं. अब तो अगर मोक्ष की आवश्यकता नहीं है तो हमारे कृष्ण परमात्मा ने कह दिया तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया. ए, तुझे ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो कहा कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की चरण में जा. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन. और वो ज्ञानियों की क्या कर? सेवा कर. तत्विद्धि प्रणिपाते नमस्कार कर. प्रणिपात नमस्कार कर. प्रणिपातेन सेवया, और सेवा करके प्रसन्न कर गुरु को. जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब जाके प्रश्न पूछना. तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. फिर गुरु कहेंगे हां बेटा, तूने मेरी सेवा की है, मैं प्रसन्न हूं, अब तुझको प्रश्न पूछना है तो पूछ, तब जाके गुरु को प्रश्न पूछने का और जिंदा सामने बैठने का, टेलीफोन पे नहीं, हेलो गुरु आई हैव वन डाउट। तेरे घर में ही रहे भाई, तेरे डाउट लेके सामने आने का और पहले अधिकार प्राप्त करने का। कल प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है, भाई ने अनाउंस तो कर दिया, अब मैं बताता हूं किसको प्रश्न पूछने का अधिकार है। जो एक दिन भी एबसेंट है उसको नहीं है, लो हाँ। तो मेरे लिए आप रोज उपस्थित रहें, यही तो मेरी सेवा है। कृष्ण परमात्मा ने साफ कर दिया, मैं कहना ये चाहता हूं अगर चार्वाक के मुताबिक शरीर ही आत्मा है तो ये उपदेश का कोई अर्थ नहीं है न। फिर उपनिषद कहते हैं तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित हाथ में लेके जा, वो एक समय था, हमारी परंपरा है। मर कहते हैं न कि नष्ट हो चुकी है, ठीक है कोई एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंत। परंपरा समाप्त हो चुकी, फिर बच क्या गया है कि बड़े लोग के पास जाते हैं तो हाथ में पुष्प फूल तो लेके जाते ही, हम लोग खाली हाथ से नहीं जाते। वो टाइम पर समीधा लेके जाते थे तो कहा अगर उतरे ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए तो तद विज्ञानार्थम, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब गुरु में वा भी गच्छेत, गुरु के पास जमर। कैसा गुरु चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ चाहिए, दोनों। श्रोत्रिय मतलब है शास्त्र को जानने वाला, शास्त्रज्ञ। श्रोत्रिय जिसने बहुत सुन सुन सुनकर उपनिषदों के गहन रहस्यों का पान किया है वो श्रोत्रिय। मैं अकेला श्रोत्रिय नहीं, ऐसे तो उपनिषद पढ़े लिखे लोग कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, सब पढ़ाते हैं उपनिषद गीता, सब पढ़ाते हैं। मैं वहां पर कैसा माहौल होता है, वो फिर प्रोफेसर गीता पढ़ा के आया, फिर स्टाफ रूम में और प्रोफेसर बैठे हैं, फिर कहता है आई थॉ भागवत गीता करके दुआ निकालता है। हमारे एक राष्ट्रपति बहुत ज्ञानी राधाकृष्णन, ही सेड वेरी वेल, फॉर इंडियंस अवर स्क्रिप्चर्स एंड अवर परंपरा इज ए वे ऑफ लाइफ एंड फॉर फॉरेनर्स इट इज ए व्यू ऑफ लाइफ। तो हम कहते हैं यहां पर कि गुरु कैसा होना चाहिए? शास्त्र का ज्ञाता तो होना चाहिए, मगर ब्रह्म में निष्ठ भी तो होना चाहिए। जिसने आत्मा की खोज की, आत्मा को जाना है, तो कृष्ण कहते हैं वही उपनिषद ने कहा कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगुरु में वा भी गच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर चार्वाक के सिद्धांत को हम मान लेंगे तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं, शास्त्र की आवश्यकता नहीं, उपदेश की आवश्यकता नहीं। परमपुरी को तोड़ दो मकान को, क्यों? लोग आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, चार्वाक सत्य कहता है। और अगर शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो सबको मोक्ष ऐसे ही मिल जाएगा। मौत होती है, मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि शरीर ही आत्मा है। तो इसलिए हम वेदांत वाले वो सिद्धांत को सत्य नहीं मानते हैं। और हमारे उपनिषदों का क्या होगा? जो उपनिषदों ने आत्मा के बारे में हमको संदेश दिया है, आत्मा कैसा है? अदृश्यम अव्यवहार्यम। व्यवहार आत्मा से नहीं होता है, वो तो निराकार है, निर अवयवी है, अतीन्द्रिय है। हाँ, तो देखो आत्मा कैसा है? अदृश्यम अदृश्य है, अव्यवहार्यम अग्राह्यम, कोई भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होता है, अव्यपदेश्यम एकांत्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। बहुत मजा आई, क्यों मजा आई? मैं अभी फ्लोरिडा में था और एक सात साल का बच्चा, सात साल से भी कम होगा, क्योंकि मैंने उसको पूछा किसमें पढ़ रहा है तो उसने कहा मैं केजी क्लास में हूं। तो आप अंदाजा लगा केजी क्लास में होगा तो कितनी साल होगी? पांच सात के बीच में होगा, ठीक है। और वो स्टेज में खड़ा हुआ मेरे प्रवचन से पूर्व और उसने ये मंत्र बोला, मैं खुश हो गया। धन्य उसके मां बाप, इतना बड़ा मंत्र और ये कारिका की बात है, वो केजी क्लास वाला लड़का और एक भी गलती नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई दोष नहीं, और फट फट बोलता था। वाह धन्य है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर ये उपनिषद है, अगर देह को आत्मा मानेंगे तो पूरा उपनिषद गलत हो जाएगा। आत्मा का तो ऐसा ऐसा वर्णन है, तो चार्वाक कहता है कि देह ही आत्मा है, ये बात हम लोग मान नहीं सकते। अब कंक्लूजन, वेदांत क्या कहता है, देह कभी आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि देह स्वयं प्रकाशित नहीं है, शरीर को अपनी खुद की सत्ता नहीं है। शरीर नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, देह नहीं कहता कि मैं देह हूं, देह नहीं कहता कि मैं जन्मा हुआ हूं और मरने वाला हूं, देह नहीं कहता कि मैं विकारी हूं, देह नहीं कहता कि मैं परिवर्तन वाला हूं। ये तो उसको देह को देखने वाला कहता है कि ये जो मिस्टर सोइन सो है ना, पहले छोटे बच्चे थे, शैशव अवस्था में थे, फिर बाल्यावस्था में आए, फिर युवान बने, वो देह नहीं कहता है, देह को देखने वाला दूसरा कहता है। तो देह को देखने वाला दूसरा कोई है, वो चेतन है, और शरीर तो जड़ है, इसलिए जड़ शरीर आत्मा नहीं बन सकता है। देह है देश काल से परिच्छिन्न है, फिजिकल ग्रॉस बॉडी इज बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, और आत्मा इज फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस। तो ऐसा जो देश काल में बद्ध है, वो देह कभी आत्मा नहीं बन सकता है। और आत्मा के बारे में तो भगवद गीता ने, वेदों ने, उपनिषद ने गर्जना घोषणा करके कहा है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, अजन्मा है, अनबॉर्न सुप्रीम रियलिटी। तो आत्मा ऐसा है तो देह कैसे, देह तो मरता है, देह तो जन्मा हुआ है, वो आत्मा नहीं बन सकता है। एक लॉजिक दे देते आपको, अगर देह आत्मा है समझ लेना, तो जब ऑपरेशन के पहले या तो लोकल में या जनरल में ऑपरेशन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म पहले सुंघाते थे, अब इंजेक्शन जो भी देते हैं, या ऑपरेशन के पहले उसको बेहोश करते हैं, या दो टाइप की फीट आती है, हिस्टेरिकल फीट, एपिलेप्टिक फीट, और कोई ऐसे ही मूर्छित हो जाता है शॉक से, कोई सदमा लगने से, तो ऐसे समय में मूर्छित कौन होता है, देह या आत्मा? तो जो मूर्छित होता है वो आत्मा कैसे बन सकता है? बस सीधी बात समझ में आ गई, आत्मा तो मूर्छित हो ही नहीं सकता है, इट इज एवर कॉन्शियसनेस, इट कैन नॉट बिकम अनकॉन्शियस। तो अब मैं कहता हूं अनकॉन्शियस कौन बनता है, आत्मा और शरीर? वेरी गुड। क्या कौन अनकॉन्शियस होता है? शरीर। अरे जोर से बोलो ना, आत्मा या शरीर? शरीर, सच बात है। अब शरीर जड़ है कि चेतन? जड़ का मतलब है इट इज अनकॉन्शियस, द वन विच इज अनकॉन्शियस, इट कैन नॉट बिकम अगेन अनकॉन्शियस। समझ में आता है? उत्तर तो दी दिया सबने जोर से कि शरीर, शरीर तो जड़ ही है, वो तो अनकॉन्शियस है ही, वो तो मूर्छित है ही, वो दोबारा किसे मूर्छित होगा? और आत्मा है, एवर कॉन्शियसनेस है, वो अनकॉन्शियस हो नहीं सकता है। क्या होता है तो पता ही नहीं कुछ। ये जड़ और चेतन को जोड़ने वाली एक लिंक होती है, वो लिंक को डॉक्टर तोड़ देता है खाली खाली, बिना समझ के बात करते हुए। और जब काटता है फट ले है तो दर्द होता है, हाँ देखो दुख हो, सब होता है, मगर दुख महसूस नहीं होता है मूर्छित अवस्था में, कोई मूर्छित नहीं होता है। और जो ऐसा जड़ है शरीर, वो शरीर कभी आत्मा नहीं बन सकता है। स्वामी जी आपका लॉजिक नहीं समझ में आता है, दूसरी बात करते हुए नहीं समझ में आता है, ऐसा कहो पहले कि नहीं समझ में आता है। अच्छा आपने कोई प्रज्ञा चक्षु को देखा कि नहीं देखा है? प्रज्ञा चक्षु में आंख से अंधे, उसको देखा नहीं देखा? अच्छा कोई आपका कभी सर दर्द हुआ है? अभी स्वामी जी हो गया शुरू, आप ऐसी बात करते, सर दर्द चालू है, वो बहन बता रही हाँ कल बता रही थी मेरे को, सर दर्द होता है बोलती। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी अंध व्यक्ति भी अगर कंप्लेन करता है कभी कभी कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरा शरीर दुखता है, मेरा सिर दुखता है, तो अब मैं आपको प्रश्न करता हूं, अंध व्यक्ति भी ये कहता है कि शरीर दुखता है, सर दुखता है, तो शरीर को या सिर को और उसके दर्द को जानने वाला है कि नहीं? तो जानने वाला है अंध व्यक्ति भी, और वो कहता है मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा शरीर दर्द हो रहा है, तो वो क्या कहता है, मैं वो शरीर को जानता हूं जो दर्द करता है, मैं वो सिर को जानता हूं जो दर्द करता है। तो जानने वाला चेतन है और जिसमें दर्द होता है वो कौन है, जड़ है। तो अंध व्यक्ति भी समझता है कि शरीर मुझसे अलग है, भिन्न है। तो अंध व्यक्ति को भी समझ में आता है, तो आंख वाले को समझ में नहीं आता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं क्योंकि शरीर को जानता हूं। आश्चर्य है, अंध भी जानता है कि मैं शरीर वाला हूं, शरीर नहीं हूं, और मैं शरीर को जानने वाला चेतन आत्मा हूं और शरीर से भिन्न हूं। और चार्वाक वाले कहते हैं कि मैं शरीर हूं। मैं आगे बात नहीं कहता हूं क्योंकि इतनी पर्याप्त बात है, इतना लॉजिक आपको समझने के लिए, फिर नहीं समझना है उसकी बात अलग है। देखिए, ये तो देहात्मवादी की बात हो गई। फिर एक दूसरा मत है, वो कहता है कि मैं इंद्रिय हूं, इंद्रियात्मवादी। तो हमने एक तो नक्की कर लिया कि भई ये चार्वाक वाले हैं, शरीर को आत्मा मानने वाले, वो सत्य नहीं है। मगर ये जो है ना इंद्रियात्मवादी, वो कहते हैं कि मैं इंद्रिय हूं और इंद्रिय ही आत्मा है। अब हमारे लिए एक सुविधा हो गई, जो लोग ये कहते हैं कि इंद्रिय ही आत्मा है, उनकी बात मानेंगे तो चार्वाक के साथ हमारा लड़ना बेकार है। क्यों? चार्वाक का ये लोग ने विरोध कर दिया। चार्वाक ने कहा कि शरीर आत्मा है, ये लोग कहते शरीर नहीं, मगर शरीर आत्मा है, उसका खंडन कर दिया इंद्रियात्मवादी ने। तो हमने किसके साथ लड़ना है अभी, जो कहता है कि मैं इंद्रिय हूं। वो क्यों कहते हैं कि इंद्रिय आत्मा है, इसकी सीधी सादी बात बता दूं आपको। ये लोग का मत ऐसा है कि जब इंद्रियां काम करती है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सुगंध या गंध को प्राप्त करता है, जीभ स्वाद लेती है, इंद्रियां और अवयव, पैर चलते हैं, हाथ ग्रहण करके छोड़ देते हैं, इंद्रियां और अवयव और विशेष करके इंद्रियां जब कार्यान्वित होती है तब शरीर चलता रहता है। जब इंद्रियां अपना काम बंद करती है तो शरीर जड़वत हो जाता है। और निद्रा में कैसा हो गया शरीर, जड़वत। क्यों? निद्रा में आंख देखती है नहीं, कान सुनते हैं नहीं, जीवा स्वाद लेती है नहीं, त्वचा स्पर्शानुभूति करती है नहीं, तो इंद्रियां काम बंद कर देती है तो शरीर जड़वत हो जाता है। इंद्रियां काम शुरू करती है तो शरीर चेतन जैसा लगता है। इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है, दैट इज द कंक्लूजन। और इसको कहते हैं इंद्रियात्मवाद। अब वेदांत वाले कहते हैं कि देखो भाई, अगर इंद्रिय ही आत्मा है ऐसा आप लोग मानते हो, समझ लेना, इंद्रिय ही आत्मा है, तो जो लोग बहरे हैं, जो लोग गूंगे हैं, जो लोग अंध हैं, यानी कि जिसको इंद्रियां नहीं है, वो बिना आत्मा के हो जाएंगे। समझ जाती बात? अगर इंद्रिय ही आत्मा है तो आंख नहीं है, तो आंख तो इंद्रिय है, और जिसको आंख नहीं है वो आत्मा के बिना के हो गए। तो यहां पर बात कुछ बैठती नहीं है। इसलिए कहते हैं वेदांत में कि भाई इंद्रिय है या आत्मा है, इंद्रियां विकारी है और आत्मा कैसा है, अविकारी है। फिर आगे कहते हैं अगर आप ये कहोगे कि इंद्रिय ही आत्मा है तो फिर भी उपनिषद गलत हो जाएंगे। उपनिषदों ने साफ साफ कहा न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति, यानी वाणी वो आत्मा के पास नहीं पहुंचती है और चक्षु नहीं पहुंचते हैं, कोई पांच में से कोई भी इंद्रियां आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ आत्मा और इंद्रिय अलग अलग है। और ये लोग क्या कहते हैं इंद्रियात्मवादी, इंद्रियों को ही आत्मा मान लेते हैं। तो इंद्रियात्मवाद है, अतार्किक है, अवैधिक है, अप्रमाणित है, अविवेकी है, और हम वेदांत वाले उसके साथ सम्मत नहीं हो सकते हैं। इंद्रियात्मवादी वाले भी चले गए, देहात्मवादी भी चले गए। अब एक दूसरा आता है प्राणात्मवादी। ये लोग का मंतव्य ऐसा है कि प्राण ही आत्मा है। अब ये लोग क्यों मानते हैं कि प्राण आत्मा है? सुन लेना उनकी बात। मृत्यु के समय देह में अवयव, इंद्रियां, बुद्धि सब कुछ होते हुए भी प्राण निकल जाने पर देह क्रिया शून्य हो जाता है। प्राण निकल जाने पर देह क्रिया शून्य हो जाता है, जड़वत पड़ा रहता है। इसलिए प्राण ही आत्मा है। और प्राण होता है तभी भूख लगती है, प्राण होता है तभी प्यास लगती है। प्राण निकल जाता है तो मुर्दे को ना प्यास लगती है, मुर्दे को ना भूख लगती है। इसलिए प्राण ही आत्मा है, एस्टैब्लिश कर दिया। देखो उसमें क्या दोष है। जब कोई बेहोश हो जाता है या हम सुषुप्ति में होते हैं, अब देखो सिद्धांत समझ लेना। प्राण क्या है? आत्मा है। पहले में क्या था? देह आत्मा, दूसरे में इंद्रियां आत्मा, अब ये लोग क्या कहते हैं? प्राण आत्मा। अगर प्राण आत्मा है, समझ लेना साहब, आप सो गए, आपके घर में चोरी हो गई और आपके कमरे में जो तिजोरी थी उसमें गहने कोई ले गया। अगर प्राण आत्मा है तो आंख काम नहीं करती, कान काम नहीं करते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, अवयव काम नहीं करते, मगर प्राण तो चालू होता है और जाता है, बाहर निकलता है, जाता है, मतलब जागता रहता है। अगर प्राण आत्मा, प्राण जागता था तो सुबह पुलिस पूछेगी भी क्या कैसा हुआ, हां बड़ी बड़ी मूछ वाला था, चड्डी पहनी थी, बनियन पहना था, क्यों? प्राण जागता है और प्राण आत्मा है तो प्राण सब कुछ रिपोर्ट करके पकड़वा देता है। मगर कहते हैं कि सुषुप्ति में हम कहते हैं आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तो ऐसा आत्मा कैसा जो कुछ नहीं जानता है? तो प्राण जागता हो भी कुछ जानता नहीं है और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए बात हमको स्वीकार नहीं है। प्राण होता है फिर भी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए प्राण को हम आत्मा नहीं मान सकते हैं। आगे चलते हैं साहब। प्राणात्मा नहीं है क्योंकि प्राण पांच है, आत्मा तो एक है। प्राण, व्यान, उदान, समान, पांच जैसे है ना, पंच प्राण कहते हैं ना। तो भाई शास्त्र में भी कहा, उपनिषदों ने कहा, वेदों ने कहा, सबने कहा, हमने माना भी है कि प्राण तो पांच होते हैं और आत्मा तो एक ही है, इसलिए जो पांच वाला है बहुमति में है वो आत्मा नहीं हो सकता है, आत्मा तो एक ही है। दूसरी बात, प्राण है माया का जो सत्व गुण है, वह सत्व गुण से पांच प्राण का जन्म हुआ है और आत्मा के बारे में हम सब जानते हैं, जो नित्य अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पहले भी था, अभी है और रहने वाला है, ऐसा जो आत्मा है तो ये तो जन्म ले चुके हैं। कौन? पांच प्राण। किसमें से? सत्वगुण में से। सत्वगुण किसका है? माया का है। अच्छा, तो माया के द्वारा पांच प्राण जन्मे हुए हैं और आत्मा तो अजन्मा है, इसलिए ये जो आप कहते हैं प्राण आत्मा है ये हम मान सकते नहीं है, क्योंकि प्राण कोई का कार्य नहीं, किसी का कारण भी नहीं, और ये पांच प्राण हैं। आत्मा कोई का कार्य और कारण नहीं, मगर जो पांच प्राण हैं ये तो कार्य बन गए, सत्व गुण का क्या हो गए? कार्य, यानी माया कार्यत्वात ऐसा कहा जाता है। फिर आप लोग जो कहते हो प्राण ही आत्मा है क्योंकि प्राण निकल जाता है तो सब जड़वत हो जाते हैं, आप तो कहते हो कि प्राण जाता है, पर हमने तो आत्मा के बारे में यह सुना आत्मा जाता भी नहीं आता भी नहीं। तो शास्त्रों ने कहा वो जा नहीं सकता है ही, और जाता आता नहीं है, तो जाने आने वाला जो प्राण है वो प्राण को हम आत्मा नहीं मानते हैं। क्यों? उसमें तो ऐसी बात है, उत्क्रामंतम सिद्धम भापी, उत्क्रमण भी करता है, प्राण जाता है, उदान वायु जाता है, इसलिए उसका नाम उदान है। उदान का मतलब उत्क्रमण करता है, जब जीवात्मा उठता है पुनर्जन्म के लिए तो उदान वायु है वही उसको मदद करता है। अच्छा, मगर आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं होती, उड़ के जाने की, कोई को पकड़ने की, कोई को छोड़ने की, इसलिए वो प्राण है वो आत्मा नहीं बन सकता है। फिर एक बहुत अच्छी बात शास्त्र ने बता दी, अगर प्राण आत्मा है, देखिए अगर प्राण आत्मा है तो पांच इंद्रियां है, हैं आंख नाक कान, ये उसकी क्या बन गई, दासियां बन गई, ठीक है ना। प्राण अगर आत्मा है तो आत्मा कहेगा ऐसी आंख काम करेगी, कान काम करेगा, नाक काम करेगा। तो कहते हैं मूर्छा जैसी अवस्था जब होती है तो प्राण तो सक्रिय होते मूर्छा में भी, मूर्छित अवस्था में भी है। तो प्राण अगर आत्मा है तो आत्मा सक्रिय होता है, देखिए सब, और इंद्रियां निष्क्रिय होती है, इन्हें इंद्रियां काम नहीं करती है। अरे ये कैसे हो सकता है, स्वामी जो मालिक है वो नौकर जैसा आ जाएगा, अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, स्वामी है मालिक है आत्मा मतलब वो काम करता रहेगा, और नौकरानियां हैं पांच इंद्रियां वो रेस्ट करती रहेगी, ऐसा नहीं बन सकता है। तो शास्त्र ने अच्छा सिद्धांत दे दिया, साम्राजी ही रणोद्युत्ते विरमंती न सैनिका तस्मा न कर्ण स्वामी प्राणो भवितुम अर्हति। लड़ाई होती है तो सेनाधिपति होगा ने वो लड़ता रहेगा, और सब सैनिक क्या करेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि इंद्रिया आराम करती है। तो ऐसा नहीं होता है, तो कहते इसलिए हम मानते हैं कि जो प्राण है जिसको कहते हैं आता है जाता है, प्राण तो उत्पन्न हुआ है, आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं है, इसलिए प्राण है ये कभी आत्मा नहीं बन सकता है। फिर कहते हैं मन आत्मा है, नहीं मन चंचल है, और आत्मा तो चंचलता से मुक्त है, मन में परिवर्तन होता है, मन शांत होता है, मन विक्षिप्त होता है, मन चंचल होता है, और आत्मा अपरिवर्तनशील सत्य है, इसलिए आत्मा है उसको अगर मन मानेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मन को अपनी स्वतंत्र सत्ता और स्फूर्ति नहीं है, आत्मा को अपनी ही सत्ता और स्फूर्ति है, इसलिए मन आत्मा है, ये बारे में भी हम कुछ ठीक बात है ऐसा मानते नहीं है। मन विकारी है, चंचल है, क्षुब्ध है, विक्षिप्त है, शांत है, मन द्वंद्व वाला है, क्योंकि मन में राग है और विराग है, मन में राग है और द्वेष है, आत्मा में न राग है, आत्मा में न द्वेष है, आत्मा तो निर्द्वंद साक्षी है, इसलिए मन भी तो आत्मा नहीं हो सकता है। तो फिर कहते हैं बुद्धि ही आत्मा है, इसको कहते हैं क्षणिक विज्ञान वाली, चलाम बुद्धि अहम इति विदुहु, मेरी बहुत बड़ा सिद्धांत है। कई लोग ऐसे हैं कि जो चल बुद्धि हैं, क्योंकि बुद्धि कभी कभी मंद बुद्धि हो जाती है, कभी कोई कुशाग्र बुद्धि हो जाती है, हम कहते हैं somebody is idiot and somebody is genius, ये बुद्धि के संदर्भ में बात चलती है। तो ये तो बुद्धि में ऐसे भेद दिखते हैं, आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात और है कि ये लोग हैं जो कहते हैं कि बुद्धि ही आत्मा है, बुद्धि मंद और तीव्र होती रहती है, बुद्धि कभी काम नहीं करती, कोई आपके घर में मिलने के लिए आज मत आइए, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, गुजराती में सरस गया जाए हमारी बुद्धि बहर मारी गई तो मैं आपकी काले आवज। तो देखिए अगर बुद्धि को आत्मा मानेंगे तो बुद्धि के संदर्भ में कई कई बातें हो जाएगी, मेरे ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। और बुद्धि क्षणिक क्षणिक होती है, सुषुप्ति में बुद्धि निर्णय ले ही नहीं सकती, सुषुप्ति की अवस्था में बुद्धि काम ही नहीं करती है, तो बुद्धि को आत्मा मानेंगे तो गलत बात हो जाएगी। तो ऐसा मानने वाले है कौन, उसकी बात मैं आगे करूंगा। क्षणिक बुद्धि, बुद्धि ही आत्मा है, वंस अगेन, बुद्धि ही आत्मा है ऐसा मानने वाले को बौद्ध धर्मी कहा जाता है, बुद्धि ही आत्मा है। और बहुत बड़ी बातें ये लोग ने की, मगर आदि शंकराचार्य ने वही बौद्ध धर्म को भारत की सरहदों से बाहर धकेल दिया, क्योंकि वो अनिश्वरवादी है, वो भी आगे बताऊंगा मैं, ईश्वर को नहीं मानते वो लोग। बुद्ध धर्म में ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, उसका स्वीकार नहीं किया, अनिश्वरवादी मतांतर है वो सब। तो वो लोग ऐसा कहते हैं बुद्धि ही आत्मा है, हम कहते हैं बुद्धि को स्वतंत्र सत्ता और स्फूर्ति नहीं है। मैंने कह दिया ही इज जीनियस, तो एक होता आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसको हम कहते हैं, यानी बुद्धि की तीव्रता मंदता मापता है आईक्यू, तो उसके संदर्भ में बुद्धि के ऊपर हम बातचीत करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि समबडी इज जीनियस यानी कुशाग्र बुद्धि वाला है, सूक्ष्म बुद्धि वाला है, और सम वन इज इडियट नहीं समझता है, मूर्ख है, मूर्ख या विद्वान, जीनियस या इडियट, ये किसके संदर्भ में है? बुद्धि के संदर्भ में। और हम बुद्धि को जानते हैं, तो बुद्धि को अगर जानते हैं तो जानने वाला तो अलग होता है, और बुद्धि तो जड़ है, तो जड़ बुद्धि आत्मा कैसे बन सकती है? फिर भी बिप बिप कॉन्शियसनेस यानी कि क्षणिक बुद्धि जो होती है उसको आत्मा मानने वाला एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, जिसके बारे में कल जिक्र करेंगे। घड़ी मुझे इजाजत आज नहीं दे रही है, और कल वो भी करेंगे, और अंत में आपके प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी कल होगा। शायद आज मुझे प्रश्न मिल भी जाएंगे, और फिर अधिकार के मुताबिक मैं उत्तर देने का कल प्रयास भी करूंगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।